थ्रू ओनली 7 मंथ्स में सुबीलुल जन्ना कोर्स पूरा किया, पूरा ए टू जी सूरत फातिहा से लेके नास तक उन्होंने किया। और वो जो बाकी सिस्टर्स हैं जो वहाँ की कोऑर्डिनेटर, उन्होंने ये सोच के मुझे इनवाइट किया कि आज हमने अपनी सिस्टर की खुशी में पार्टी रखी है कि आपने ये कुरान पूरा किया ना, तो हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, थोड़ी देर आप भी बात करें। तो खैर, जब उन्होंने मुझे साथ लिया तो बड़ी खुशी थी, वो भी थी। तो मैंने कहा कि जिन्होंने पूरा किया उनको बताएं, उनसे बात कराएं ना। तो वो मतलब तो जो उनकी आवाज़ थी और जो उनके जज्बात थे, और जी आप तो दिन रात मेरे साथ होती हैं, मैंने कहा मेरी नहीं कुरान की बात करें। खैर, उनको मैंने बात कर करा के मैंने कहा कि मुझे बहुत ही खुशी है कि आपने ये किया, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि कुरान एक दफ़ा पढ़ने में नहीं समझ आता, तो आप अब इसको, अब इसका तरीका ये है कि आप किसी भी ऑनलाइन कोर्स के थ्रू या तो नूरुल्लाह नूर में आ जाएं, उसमें तो दोहराई ऑफ कोर्स होगी या सुबीलुल जन्ना। कहती फिक्र नहीं करें साहब, मैंने दोबारा शुरू कर दिया, मैं 7वें पारे पे हूँ, मैंने लिखना शुरू कर दिया। वो नूरुल्लाह नूर जिसमें राइटिंग होती है, वो जहर जो इंचार्ज थी उन्होंने बताया हुआ था उनको। तो कहती मैंने अब अपने ओन पे वो अगले कोर्स में खुद ही कर रही हूँ, और 7 सपारे मैंने अपने हाथ से तर्जमे से लिख लिए ना। तो मैंने सोचा कि कौन कहता है कि किसी को कहें तो कोई करता है, ये आप खुद कहेंगे तो आप कोई काम करेंगे। तो ये दुआ करेंगे अल्लाह हमें अपने इस वक्त की बेहतरीन कदर की तौफीक दे, और ऐसा ना हो कि हम अपनी ज़िंदगी को ज़ाया कर दें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो अल्लाह ताला ने हमें दी है नेमतों की सूरत में, लेकिन हम उसका कमा हक का हो जो हक है वो नहीं देते। ज़िंदगी तो गुजर ही जाएगी, यकीन करें ये तो कभी नहीं रुकेगी, लेकिन मैं रुकती हूँ कि नहीं। तो इस सूरत में जो और बहुत कुछ था क़यामत सूरत में, उसमें एक चीज़ क्या थी कि जिसके ऊपर इंसान को यह एहसास दिलाया गया था कि तुम अपनी ज़िंदगी की फ़िक्र करो और डोंट डिले योर सलात। एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है तिलावत के साथ, वो हम देख के तो इस पर थोड़ा सा मज़ीद गौर व फ़िक्र करके अगली सूरत पे जाएंगे, और अल्लाह ताला से ये दुआ करेंगे कि हम सबको अपनी फ़िक्र लगा दें। इरम, ये लाइट बंद कर दीजिए, और सिस्टर आयशा आप लोगों को भी लिंक में गया हुआ है, अगर आप लोग वीज़ा क्यू पे दिखाते हैं तो ठीक है। यानी इस बात को सुनते हैं, ये सोचिए कि हम नमाज को कितना डिले करते हैं और बिला वजह डिले कर रहे होते हैं, और ऐसे लगता है कि बस सारे ही काम बड़े अहम हैं नमाज के सिवा। तो आइए देखते हैं। बंद प्रेजेंटेशन में और भी चीज़ें अच्छी लगती हैं। जो मुझे सबसे अच्छा लगता है ना, वो ये मंजर है कि जब आप देखिएगा आप दोबारा जरा ईंट आखिरी ईंट कब्र ये देखिएगा मैयत को कब्र में डाल रहे हैं ना अभी यहाँ देखिए थोड़ी सी रोशनी बाहर से आ रही है ना अब सब जा रहे हैं ये देखिए ये आखिरी ईंट जब रखेंगे अब हमें तो बाहर की खबर है ना कि वो खड़े हैं लेकिन अंदर क्या हो रहा है तो अकीम सलात का कबल ममात का अपनी नमाज को अदा करो अपनी मौत से पहले आप देखिए कि सूरत क़्यामत का ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि वक्त कम है और वो क़्यामत जो हम सब के सर पे खड़ी है अगर आज हमें इस दुनिया में रहते हुए उसका एहसास हो जाए ना तो हम कभी भी अपना वक्त ज़ाया हम सब पेंड में ही पड़े रहते हैं और अपनी चीज़ों को खुद बखुद इस तरह से छानते पटकते रहते हैं कि बहुत ही मसरूफ फिर आप देखिए कि इसमें जो जान कनी की बात थी इस पर आपने गौर किया जब पिंडली से पिंडली जुदा होती है और ऐसे लगता है कि जिस्म का एक एक जोड़ खुल रहा है बल्कि अगर आप कुरान पाक की कुछ आयात को सामने रखें और उस पर मुझे याद आ रहा है इंसान ने बात भी की थी कि जब इंसान को मौत आती है तो क्या होता है तो उसका ये सारा गोश्त जो है ना ये हड्डियों से अलग हो जाता है ये जो हमारे मसल है ना जिसको पट्टे बोलते हैं आसाब ये गोश्त के को हड्डियों के ऊपर ऐसे बांधे हुए ये धागे हैं रोप्स हैं असबा कहते भी रस्सी को ही है तासुब भी लफ्ज़ इसी से ही है ना असीब का लफ्ज़ भी आपने कुरान पाक में पढ़ा जब मौत आती है हमारा सारा जिस्म खुल जाता है आंखें बंद दिमाग बंद सब कुछ ख़त्म 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 दैट्स इट तो अगर आज हमने अपनी इस दुनिया में अपने वक्त से फ़ायदा नहीं उठाया तो कल कौन है जो हमें फ़ायदा देगा फिर इसमें एक और चीज़ जिस पे आपको गौर करना था वो है कुरान की हिफाजत अल्लाह ताला ने ये बात इतनी सच्ची बयान की है कि इन्ना अलैना जमहु व बयाना जब तक अल्लाह ना चाहे ना ही आपके सीने में ठहरता है और ना आपकी ज़ुबान पे आके बयान होता है ये भी एक मौजज़ा ही है आप अभी कोशिश करते हैं तर्जमा भी याद करते हैं फिर अल्हम्दुलिल्लाह आपको याद भी हो जाता है लेकिन कैसा नहीं लगता कि अगला पढ़ते जाते हैं पिछला भूलता जाता है ख़ासतौर पर शुरू के तीन चार पारों में ये बहुत होता है कि जब टेस्ट दिया था तब तो आता था लेकिन अगर बिल्कुल छठे पारे का टेस्ट है तो अब दूसरे पारे का तर्जमा खोलें तो बाद से वह भूल जाता है ऐसे ही लगता है ना ये अल्लाह ने बताया आप जितनी भी कोशिश करते हैं ना उन कोशिशों के बदले में अल्लाह आपसे खुश होकर ना आपको खुद ही याद दिला देता है मेरी बात कितनों को समझ आ गई है ये नहीं कि कोशिश नहीं करनी लेकिन मेरी और आपकी कोशिश से ये कुरान सीने में नहीं ठहरेगा हमारी उन कोशिशों को और देखकर हमारी उस बेबसी को महसूस करके अल्लाह सुबहान ताला हमें तोहफे के तौर पर यह कुरान याद करा देता है कभी किसी इतने छोटे से सीने में ये कुरान जमा हो सकता है कभी आपने सोचा 6 साल का बच्चा हाफिज 7 साल का बच्चा हाफिज उसका कद काठ देखें और कुरान की वो बड़ी बड़ी आयतें देखें आयत दैन उसमें है आयत शहादतैन उसमें है उसमें आयतुल कुर्सी है कैसे छोटे से छोटे बच्चों को याद हो जाती है ये कैसे होता है अल्लाह के ज़िम्मे याद रखिए ये मेरा और आपका काम ही नहीं है सिर्फ मेरा और आपका काम क्या है तड़प ख्वाहिश पैदा करें कि अल्लाह मुझसे कुछ ले ले कोई खिदमत मेरे से इस किताब की कबूल कर ले आजकल अपनी दुआ में ये दुआ रखें क्योंकि इमोशनल चल रहे हैं ना और इंसान जब इमोशनल होता है तो दिल से बात निकलती है कुरान के कोर्स में मैंने जो फील किया एज अ स्टूडेंट शुरू में स्टूडेंट्स बहुत इमोशनल होते हैं घबराहट बहुत होती है समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या होगा लेकिन शौक बहुत ज़्यादा होता है फिर थोड़ा सा पाँव जमते हैं 5-6 बारों के बाद तो फिर उसमें घबराहट ख़त्म हो जाती है लेकिन फिर उसके बाद केयरलेसनेस आती है कई टेस्ट आपने बगैर पढ़े दिए होंगे पहले टेस्ट सोच भी नहीं सकते थे कि आप बगैर पढ़े दें लेकिन फिर आपने दिए हाँ तो जब ये चीज़ें अल्लाह ने आपसे कराई ना तब अगले मरहले भी इसके अल्लाह ही आपके ऊपर आसान करेगा जब तक आप तड़पते रहेंगे करेंगे फिर उसके बाद ये आखिरी धाका शुरू हो जाता है ना 20 पारों के बाद का तो वही जैसे शादी से पहले लड़कियां इनसिक्योर फील करती हैं ना पहले कहती हैं करो हमारी शादी फिर जब होने वाली होती है और तैयारियां सारी पूरी हो जाती हैं तो फिर गम शुरू हो जाती हैं भाग भाग के तैयारियाँ सारी कर लेती हैं थड़का लग जाता है ना अब ये मैंने चीज़ छोड़नी है इसी तरह हमारे साथ होता है सफ़र पे जाना है प्लानिंग खो एक जोश जोश जब आखिरी दिन होते हैं तो ना चाहते हुए भी मौत याद आ रही होती है ऐसे ही होता है ना कुरान का ये सब वक्त जिस वक्त आप गुजारे इस वक्त आपके ऊपर जज्बात गालिब हैं رونا بھی آئے گا, بہت ساری چیزیں ہوں گی. ان وقتوں میں اپنے لیے دعا کر لیں کہ اللہ اس کو میرے دل پہ ڈال دیں اور اس کو میری زبان پہ جاری فرما دیں. یقین کریں کہ اللہ سے مانگ کر بندہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا. جب آپ اللہ سے دل سے مانگیں گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دے گا. جتنا تڑپ کے مانگیں گے اتنا اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. شرط ایک ہے کہ آپ نے اس کی کوشش کرنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عادت نہیں تھی وحی کی, کوئی پلاننگ نہیں تھی, کبھی سوچا نہیں تھا. اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں کہ آپ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آپ کبھی آپ کے اوپر یہ کتاب نازل ہوگی, لیکن اللہ نے اتنا بڑا ایک آپ کے اوپر انعام کر دیا. تو پھر اس کو جب لیتا ہے انسان تو تھوڑا سا خوف محسوس کرتا ہے. تو اس میں میرے اور آپ کے لیے بھی ایک سبق ہے, گھبرائیں نہیں. کوئی بھی مشکل بڑی سے بڑی ہو آپ کی زندگی میں, آگے بھی آئیں گی بہت ساری, گھبرانا نہیں ہے. بس یہ کہہ دیں کہ اللہ تیرے اوپر جمع کرنا اور تیرے اوپر اس کا بیان کرنا. شرط ایک ہے کہ آپ کوشش کرتے جائیں, بس اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس میں آسانیاں کرے گا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اگر سورت کے آخری حصے پہ تھوڑا سا غور کر لیجئے تو اس میں بھی آپ کو اپنے لیے بہت ساری چیزیں مل جائیں گی. اور وہ کیا ہے کہ اللہ نے تو یہ خوبصورت کتاب پیش کر دی سب کے لیے برابر کی, ایک ہی جیسی, کسی میں کوئی کمی بیشی نہیں. ایک کو کوئی زیادہ کلیئر مل گئی تو کسی کو دوسری. اب اس کے بعد ہر بندے کا اپنا نصیب ہے. دنیا میں اس کتاب سے تعلق جڑے گا, چہرے پہ تازگی آئے گی, کل اللہ کے دیدار سے چہرہ چمکے گا. یعنی اللہ قیامت کے دن اپنا دیدار نصیب کرے گا, اور اس وقت جو چہرے چمک رہے ہوں گے, دمک رہے ہوں گے, اس وقت یاد رہیں گے دنیا کے غم, مسئلے, پریشانیاں, یہ تو دنیا بھی بھول جاتے ہیں. تو دعا کیا کریں کہ اللہم انی اسألک لذت نظری الی وجہک. اے اللہ میں سوال کرتی ہوں تجھ سے تیرے چہرے کو دیکھنے کی لذت کا, لذت نظری الی وجہک, یعنی جب میں تیرے چہرے کو دیکھوں تو جو لذت ملے میں تجھ سے وہ مانگتی ہوں. اور اس کے ساتھ ہی پھر لذت نظری الی وجہک و شوق الی لقائک, اور شوق تیری ملاقات کا, تیری ملاقات کا شوق لگ جائے مجھ کو. اور اس شوق کے بغیر قیامت کے دن اگر اللہ کا دیدار ہو بھی گیا تو یہ کون سی بڑی بات ہے, یہ تو کوئی بڑی بات نہیں. الی ربھا ناظرہ, اتنی بڑی نعمت ہے جنت میں کہ اس کے آگے جنت کی ساری نعمتیں ہیچ ہیں. لیکن سب لوگوں کو یہ تڑپ نہیں لگتی. کچھ لوگ دنیا میں مر کھپ جاتے ہیں, اس دنیا کے پیچھے ہلکان ہو جاتے ہیں. تو کہا وہ وجوہ یوم اذن باسرہ, باسی چہرے, تھکے ہوئے, ماندے ہوئے, پریشان, ہر وقت ایک ہی فکر, ڈپریشن, اداسی, غم ہے, سمجھ نہیں آتا کیا ہے. ایک ختم ہوتی ہے مجبوری, دوسری شروع, دوسری تو تیسری. اسی طرح اس کے اوپر مفسرین نے یہ بات بھی کہی ہے کہ جب انسان اللہ کو دیکھے گا تو اس کا چہرہ کھلے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا واقعی ایک انسان اللہ کے چہرے کو ایسے دیکھے گا جیسے آپ, جس کو اپنی زبان میں آپ کہتے ہیں ٹکر ٹکر دیکھنا, ہاں سمجھ رہے ہیں, فیس ٹو فیس, آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا. تو مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں, یہ اصل میں مجازی معنی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی کو کا انتظار ہو تو ہم کہتے ہیں میری تو نظریں اس کی طرف لگی ہوئی ہیں. ایک اندھا بھی بعض دفعہ کہتا ہے جی آپ کی طرف میری نظریں لگی ہوئی تھی, لیکن اس کو کہ دیکھ نہیں رہا ہوتا, لیکن اس کے ذہن میں یہ سوال ہوتے ہیں اس طرح کے نا, میں اس کو دیکھ رہا ہوں, کوشش کر رہا ہوں. لیکن کیا حقیقت میں اللہ کا دیدار ہوگا؟ آپ کو ایک دو روایتیں سناتی ہیں تو آپ کو اس کی کیفیت تھوڑی سی سمجھ آئے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری کی روایت ہے یہ, انکم سترون ربکم ایانا, بے شک تم اپنے رب کو اعلانیہ دیکھو گے. اور مسلم اور ترمذی کی روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا, اب آپ ذرا اس کو امیجن کیجئے, فرمایا جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے دریافت فرمائے گا, کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں کچھ مزید دوں, یعنی تمہیں مزید کچھ دوں, کیا یہ تمہاری خواہش ہے؟ تو وہ عرض کریں گے, کیا آپ نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا؟ کیا آپ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا اور جہنم سے بچا نہیں لیا؟ کہنے کا مطلب یہ کہ سب کچھ تو مل گیا, اب اور بھی کوئی نعمت ہے کہ جو آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے میزبان کے پوچھنے پہ مہمان اور ہی زیادہ شرمندہ ہوتا ہے کہ اب اور کیا آپ ہماری خاطر کریں گے, اتنی تو آپ نے ہماری کر لی. اتنے پہ اللہ تعالیٰ پردہ ہٹا دیں گے और इन लोगों को जो कुछ इनामात मिलेंगे थे इनमें से कोई इनाम भी उन्हें इससे ज्यादा महबूब ना होगा कि वो अपने रब की दीद से मुशर्रफ हों। यानी फिर उनको लगेगा कि ये नेमत तो इससे भी बड़ी थी जो अभी तक मिली है, और यही वो मजीद इनाम है जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया लिल्लज़ीन अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा। कहाँ है पता आपको? सूरत यूनुस की आयत नंबर 26 कि जिन लोगों ने नेक अमल किए उनके लिए अच्छा अजर यानी हुस्ना है और ज़्यादा भी है। तो साहबा ने पूछा था अल्लाह के नबी ये ज़्यादा क्या है, तो फरमाया अल्लाह के चेहरे का दीदार। देखिए आज मैं और आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कितनी बड़ी चीज़ है अल्लाह का दीदार। आप सूरज चांद सितारे फल फूल को देखते हैं फिर पूछें इसको बनाने वाला कौन है। अपने दिल में ये भी तड़प पैदा करें कि अल्लाह मुझे अपने दीदार से महरूम ना करना। और आपको पता है कि बहुत सारे लोग जन्नत में जाएंगे लेकिन हर एक को अल्लाह का दीदार नहीं होगा। क्यों कहा कि जब अल्लाह से मांगो तो जन्नत फिरदौस मांगो? क्यों? उसकी छत रहमान का अर्श। क्यों हजरत आसिया ने दुआ की थी कि रब्बी इब्नली इंदक बैतन फिल जन्ना? रिवायत से पता चलता है कि लोग अपने आमाल की निस्बत से अल्लाह का दीदार किया करेंगे, कुछ बस वंस अ व्हाइल एक ही बार करेंगे पूरे अपने जन्नती टाइम में, कुछ वंस अ ईयर अपने लिए सोच लें। अब हमें नहीं पता वहाँ के दिन रात कैसे हैं, कोई महीने में एक बार, कोई हफ्ते में एक बार। रिवायत में आता है कि जन्नत में एक जुमा बाजार लगेगा फ्राइडे को, और उसको जो जन्नत का जुमा बाजार है ना उसका नाम आप सुन चुके हैं दौरे कुरान में पिछली दफ़ा, यौमुल मजीद। यानी जो फ्राइड जन्नत में जो जुमे का दिन होगा ना उसको यौमुल मजीद कहेंगे, और सब जन्नती मर जाएंगे और फिर वहाँ एक दरबार सजेगा, फिर वह अल्लाह ताला नज़ूल फरमाएंगे, फिर उनसे मुलाकातें होंगी। फिर जब जन्नती घर आएंगे तो उनके घर वाले कहेंगे कि जब तुम गए थे तो इतने हसीन नहीं थे, जब वापस आया तो और हसीन हो गए। वो जो हैं यौम ज़िंदादिरा इला रब्बी का नाजिरा, अल्लाह के दीदार से चेहरों में चमक आ जाएगी, खूबसूरती होगी। फिर एक और हदीस बहुत ही क्लियरली हमें बताती है कि हम अल्लाह को देखेंगे कैसे। बुखारी मुस्लिम में अबू सईद खुदरी और अबू हुरैरा से रिवायत है, लोगों ने पूछा अल्लाह के रसूल क्या हम क़यामत के रोज़ अपने रब को देखेंगे? आपने फरमाया क्या तुम्हें सूरज और चाँद को देखने में कोई दिक्कत होती है, एनी हर्डल एनी रुकावट, जबकि बीच में बादल भी ना हो? लोगों ने अर्ज किया नहीं। आपने फरमाया इसी तरह तुम अपने रब को देखोगे। यानी खुला चा बादल हो तो फिर सूरज नहीं दिखता ना, और बादल हो तो चांद भी छुप जाता है रात को। कहा बिल्कुल खुल्लम खुल्ला देखोगे। एक और रिवायत बुखारी और मुस्लिम में जरीर बिन अब्दुल्ला से है, और मुस्नद अहमद तिरमिज़ी बहुत सारे इसके हवाले हैं। लफ्ज़ों का थोड़ा सा फ़र्क है, खुलासा क्या है इसको सुनिएगा, बहुत ही खूबसूरत रिवायत है। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि मैं अल्लाह के नबी ने फरमाया अहले जन्नत में कम से कम दर्जे का जो आदमी होगा। आप सोचें हम कहते हैं ना कि अल्लाह मुझे सबसे कम ही कर दे, लेकिन एक बार जन्नत में ले जाओ, सबसे कम का क्या इकराम है। वो अपनी सल्तनत की वसत 2000 साल की मुसाफत तक देखेगा। यानी जन्नत में सबसे गरीब शख्स का घर और उसका रहना सल्तनत से समझ जाए जहाँ उसकी अथॉरिटी है। पीछे आपने पढ़ा हलाकानी सुल्तानिया, सूरत मारिज थी या सूरत हाका थी, हाका थी शायद। तो वहाँ उसकी सल्तनत 2000 साल की मुसाफत तक दिखेगी, और इनमें सबसे ज़्यादा फजीलत रखने वाले कौन होंगे? अब आप सोचिए, सबसे गरीब बंदा इतना अमीर है तो जन्नत में जो सबसे ज़्यादा फजीलत वाला है उसका क्या हाल होगा? आप गेस करें क्या होगी इसके आगे बात। वो लोग हर रोज़ 2 मरतबा अपने रब को देखेंगे। फिर इसके बाद अल्लाह के नबी ने यही आयत पढ़ी कि उस रोज़ कुछ चेहरे तरोताज़ा होंगे और अपने रब की तरफ देख रहे होंगे। 2 दफ़ा तो कम अज़ कम फिर अल्लाह की किताब पढ़नी चाहिए ना दिन में, 2 दफ़ा तो अल्लाह से मुलाकात का शौक आए ना। कम अज़ कम 5 में से 2 नमाजें तो ऐसी हो ना कि कान्ना का तरह हो कि हमने उसको देखा। ये मैं और आप डिसाइड कर रहे हैं यहाँ। देखिए क्या बड़े लोग हर एक को मिलते हैं और हर वक्त मिलते हैं? मैं और आप चाहें दुनिया के किसी बड़े को जाके फ़ोन कर ले मिल ले, कोई देता इजाज़त? हर बंदा अपने लेवल पर ही मिलता है, तो दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती, और आप सोचिए वो क्या फीलिंग होगी जब हम अल्लाह को मिलेंगे, सारे दुख सुनाए, दुख तो याद ही कोई नहीं रहने। हदीस में आता है कि भाई जन्नती जो बड़ा दुनिया में मसाइब में था, दुखों में था, और हर बात पे ये कहता था मैं सब्र करता हूँ, मुझे अल्लाह जन्नत में आखिरत में इसका बदला देंगे, तो क़यामत के दिन जब उसका हिसाब शुरू होगा तो अल्लाह ताला कहेंगे कि ठहरो फरिश्तों, जाओ पहले इसको दूर से जन्नत दिखा के लाओ, फिर मैं इसके दुख सुनूंगा, फिर इसको जजा दूंगा। तो फिर उस वक्त जब अल्लाह ताला के हुक्म से वो एक जन्नत का दूर का टूर करके आएगा, अभी दाखिल नहीं हुए, अभी बस दूर से देखा है, फिर उसको वापस ले आएंगे और कहेंगे भाई सुनाओ क्या था मसले, क्या गम थे, क्या तुमने सब्र किया। कि अगर अल्लाह तेरे जलाल की कसम मैंने आज तक दुनिया में गम तकलीफ बीमारी दुख का नाम नहीं सुना। आपने फरमाया जन्नत की दूर की झलक दुनिया के सब गम तो भुला देगी। ये गमों की हैसियत है हमारी, ये दुनिया फानी है ना, हमारी बीमारियां भी फानी है, गम भी फानी है, शर्त एक है कि मेहनत करके अल्लाह से अल्लाह की रजा से जन्नत की तरफ पहुंच जाए। इब्ने माजा में जाबिर बिन अब्दुल्ला से रिवायत है, अल्लाह इनकी तरफ देखेगा और वो अल्लाह की तरफ देखेंगे। देखिए मोहब्बत होती है ना, फिर दोनों एक दूसरे को देखते हैं, कई ताल्लुक है ना हमारे इंसानों से, मोहब्बत है ना, दोस्त को दोस्त है तो आंखों में आंखें डाल के बातें करते रहते हैं, किसी को बुरा नहीं लगता, लेकिन सम हाउ कोई एक देखता है तो दो नहीं देख, दूसरा नहीं देखता। कब? नंबर एक रिस्पेक्ट की वजह से, रिस्पेक्ट की वजह से, जैसे सहाबा के बारे में आता है कभी अल्लाह के नबी सल्लम के सामने नहीं बैठते थे और आपकी तरफ देखते नहीं थे, इवन उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा शख्स भी जब नबी सल्लम से बात करते थे तो ज़रा सा हट के और नज़रें झुका के बात करते थे। तो पहली वजह कि दोनों कब नहीं आपस में एक नज़र मिलाते कि जब रिस्पेक्ट होती है। फिर दूसरी एक वजह होती है गुस्सा, दिल में कोई किसी के लिए गुस्सा, जैसे आपको अपने बच्चे पर गुस्सा होता है, आप कहते हैं पीछे हो जाओ मेरे से बात नहीं करो, शक्ल नहीं देखनी मैंने तुम्हारी, हाँ। फिर तीसरी एक वजह होती है अताब, ऐसे उनको डांटने के अंदाज से या तरबियत के नाते से। अल्लाह बंदे को देखे और बंदा रब को देखे, ये क्या मंजर है कि बीच में कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं है। इसलिए कहा कि नमाज में ऊपर नहीं देखो, आपको पता है कि नमाज में अगर जानबूझ के कोई ऊपर देखता है ना तो नमाज बातिल हो जाती है, क्यों? कि इस दुनिया में अल्लाह से रिस्पेक्ट का ताल्लुक है, वो मालिकुल मुल्क है, आज मैं कौन हूँ बंदी और वो आकर या का ना बोध या का नस्ते। जन्नत में ऐसे नहीं होगा, जन्नत में अल्लाह ताला से दोस्ती होगी। अब क्या ताल्लुक होगा? अल्लाह नोज़ दी बेस्ट। खैर आगे कहते हैं कि अल्लाह इनकी तरफ और वो अल्लाह की तरफ देखेंगे, फिर जब तक अल्लाह ताला इनसे पर्दा ना फरमा लेगा इस वक्त तक वो जन्नत की किसी नेमत की तरफ तवज्जो भी ना करेंगे और इसी की तरफ देखते ही रहेंगे। जैसे महबूब सामने हो तो कौन खाए और कौन पिए, कौन पहने, वो कहते हैं बस आप सामने बैठे हम आपको देखना चाहते हैं। तो दुनिया में छोटी छोटी मोहब्बतें अल्लाह ने डाली हैं इस बड़ी मोहब्बत के तारुफ की तरह, तो हमें इसकी दुआ करनी है। क्या शौरी तौर पे कभी इसकी दुआ की है हमने? करने की ज़रूरत है। और कुछ ऐसे बदबخت भी हैं कि अल्लाह कल्ला इन्नहुम रब्बिहिम यौमइज़िल महजूबून, पढ़ेंगे सूरह मुतफ़फ़ीन की आयत नंबर 15 में कि कुछ को तो अल्लाह आड़ दे देगा कि खबरदार तुम मेरे पास नहीं आ सकते। अब इसमें कोई कि अच्छा एक इंसान खाकी अल्लाह को कैसे देखे, अल्लाह तो नूर है, अल्लाह नूर समावात है, तो देखने से तो लगता है कि चीज सामने हो मौजूद हो और रोशनी को कोई कैसे देखे। तो इसके लिए एक छोटी सी बात समझ लीजिए कि इस दुनिया में हमारी आंखों की जो केमिस्ट्री है ना वो जन्नत की आंखों से फ़र्क होगी। अल्लाह ताला जन्नत में ले जाने से पहले जन्नतियों को नहरे हयावान में दाखिल करेंगे, डुबकी दिलाएंगे कहले, तो हमारी सारी इनर जो सिचुएशन है ना वो चेंज हो जाएगी, ताकत बढ़ जाएगी, आंखें बढ़ जाएंगी, विजन, स्मार्ट, खाना पीना, सेक्सुअल ताकत और जो कुछ भी इंजॉयमेंट की कैफियत है वो सब बढ़ जाएंगी। तो अल्लाह ताला चाहेगा तो हमें हमारी सलाहियत को बढ़ा देगा। और सच्ची बात है हमें इसकी क्या फिक्र है, जब वो खुद कह रहा है कि तुम मुझे देखोगे तो अब हम इस पर बात करें, क्योंकि बाज़ लोग इन्हीं बातों पर बहस करके गुमराह हो गए, बताओ जी कैसे देखेंगे, और अच्छा जी ये कैसे होगा। अब आज तो दुनिया में आप देखिए आंख है, उसके अंदर कॉर्निया है, रेटिना है, और उसमें खास एंगल से लाइट जाती है, फिर डिस्पर्स होती है। क्या वहां जाके ये कुछ होना है? हमने इस मिट्टी के वजूद पे तो होना भी नहीं है। तो अल्लाह हमें एक नया जिंदगी नया देगा, लिहाजा इसकी फिक्र ना करें। इसी तरह आप देखें कि आखिरत के और बहुत से मामले हैं, मसलन दुनिया में देखें शौहर बीवी हैं साथ रहते हैं, फिर अल्लाह औलाद देता है। अब दुनिया में इस ताल्लुक और उसका नतीजा हम सब जानते हैं, तो जन्नत में कैसा होगा? नहीं होगा। लेकिन ये मामला होगा, इसकी लज्जत क्या होगी, इसका क्या हालात होंगे, वो बिल्कुल यहाँ से फर्क है। तो ये दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे और आपको इसकी इस पे अमल करने वाला बना दे। फिर उसके बाद यहाँ एक लफ्ज़ आया रॉक, आयत नंबर 27 के एंड पे, वकील मन रॉक। तो रॉक का लफ्ज वही है जिसको उर्दू में हम रुकिया के नाम से जानते हैं, रुकिया करने वाला रॉक। ये नहीं कि तावीज़ गंडे और झाड़ फूंक के, बल्कि क्या है कि कोई है जो तुम्हारी जान वापस ले आए, कोई तुम्हें दम कर दे कि जिससे तुम्हारी रूह जाती हुई वापस आ जाए। और दूसरे इसका मानी क्या है, रकी तरक्का, तरक्की उर्दू में बोलते हैं ना, कुरान की एक कुरान पाक की मोहब्बत में एक हदीस भी है ना कि कहा जाए कि इकरा वरका, हाँ तो बात कहते हैं ये रक़ा से है, मानी का चढ़ने का। पहला मानी है तो क्या मतलब है कि आखिर वक्त में जब मरीज के तीमारदार हर दवा से मायूस हो जाते हैं तो कहा जाए कि लाओ कोई झाड़ फूंक वाले ले आओ, चलो कोई दामी कर दे इसको। और दूसरे मानी लिए जाएं तो मतलब क्या, उस वक्त फरिश्ते कहेंगे इस रुख को किसे लेकर जाना है, फरिश्ते अजाब के या रहमत के। मरते ही पता चल जाता है कि मरने वाला कहाँ जा रहा है। नेक होगा तो रहमत के फरिश्ते ले जाएंगे, बद होगा तो अजाब के फरिश्ते ले जाएंगे। फिर उसके बाद ये जो लफ्ज है ना साक, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, पिंडली लोग भी मानी है, डिक्शनरी मीनिंग है इसका। तो मानी क्या होगा कि मरने के वक्त टांगें सूख कर एक दूसरे से जुड़ जाएंगी। लेकिन इसका एक दूसरा मानी अरबी मुहावरे के मुताबिक शिद्दत और सख्ती और मुसीबत है, यानी उस वक्त दो मुसीबतें एक साथ जमा हो जाएंगी, एक इस दुनिया और इसकी हर चीज से जुदा होने की मुसीबत, और दूसरी आखिरत में एक मुजरिम की हैसियत से गिरफ्तार होकर जाने की मुसीबत। हर काफिर मुनाफिक फाजिर शख्स को इससे वास्ता पेश आएगा। फिर आप देखिए आखिरी आयतें तो बहुत ही दिल को हिलाने वाली हैं, कैसा इंजाम क्यों हुआ, वला सद्दक वला सल्ला, ना तस्दीक की ना नमाज पढ़ी, वलाकिन कज़्ज़ब व तवल्ला, झुटलाया और मुंह फेर लिया। ये कौन सा शख्स है, इसके बारे में तफसीर से पता चलता है कि ये शख्स अबू जहल था, कोई एक था जिसका नाम लिए बगैर अल्लाह ने कह दिया। यहाँ एक बात देखिएगा, इसने सच ना माना, फला सद्दक और नमाज ना पढ़ी, दोनों साथ आना ये बड़ी अहम बात है। क्या पता चला कि अल्लाह और उसके रसूल की सदाकत को तस्लीम करने के बाद सबसे पहली चीज नमाज है। शरीयत के बाकी अहकाम पे तो अमल बाद में होगा ना, लेकिन ईमान के इकरार के बाद पहली चीज अगली ही नमाज का वक्त, और उस वक्त आपका सल्ला फिर फायदा होगा। फिर आगे देखिए औला लकफाउला, ये भी लफ्ज यहाँ दो दफा आया है तो इसको भी देखने की जरूरत है, आयत 34 और 35 में। औला तुझे ये जेब है, ये बात तुझे ही सजती है, यानी तो इसी के काबिल है। तो औला का लफ्ज क्या है, सबसे ज्यादा हकदार, तुफ है तुझ पर। और तो मैं हम कहते हैं ना हलाकत है तेरी, कमबख्त तबाही खराबी बदबख्ती है तेरे लिए, ये मानी है कि तू अपने रब का कुफर करता था तो तेरे जैसे इंसान का तो फिर यही अंदाज हो, तेरे और जैसे इंसान का तो यही अंजाम होना चाहिए। पीछे भी हम पढ़ चुके हैं सूरह दुखान आयत 49 में मुजरिम को क्या कहा जाएगा, जुक चक। इन्ना कंतल अजीजुल करीम, तू बड़ा इज्जतदार आदमी था, बड़ा जबरदस्त था, आज चक इस अजाब को। तो लिहाजा बात को खत्म करते हुए फिर दोहराया जा रहा है के मरने के बाद जीना और जीने के बाद मरना। तो फिर इस सूरत के बाद वाकई हम सब को अपनी मौत याद रहनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آخری آیتیں پڑھتے تھے کہ جس میں کہا گیا کہ کون ہے جو علیہ ذالک بقادر علی ان یحیی الموتا, کہ کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر دے. سوال ہے نا, کوشچننگ ہے. تو اللہ کے نبی اس کے جواب میں کہتے تھے بلا, کیوں نہیں. کبھی کہتے سبحانک اللہم فبلا, پاک ہے تیری ذات اے اللہ اور یعنی کوئی بھی ایسا نہیں ہے. اسی طرح سبحانک فبلا یا سبحانک وبلا دونوں الفاظ آتے تھے. ایک روایت ہے ابو داؤد میں حضرت ابو ہریرہ سے, اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم سورت 3 میں علیس اللہ بحکم الحاکمین پڑھو, آخری آیت ہے, تو کہو بلا وانا علی ذلک من الشاہدین, کہو کیوں نہیں میں اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں. اور جب سورت قیامہ کی آیت پڑھو تو کہو بلا کیوں نہیں. اور آگے سورۃ مرسلات میں ہم پڑھیں گے فبی حدیث بعدہ یومنون, جب اس کو پڑھو تو کہو آمنا باللہ, ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں. تو یہ تھی سورۃ قیامہ, ایک چھوٹی سی قیامت کی جھلکی تھی. اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق دے. اب اگلی سورت کی تلاوت سنتے ہیں.